श्रीमद् भागवत का सबसे महत्वपूर्ण एक श्लोक है जिसको परिभाषा सूत्र कहते हैं। ऐसा जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये श्लोक सारे श्रीमद् भागवत का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। कौन सा है ये? एते चांस कला पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति योगे योगे। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के पहले स्कंध के तीसरे अध्याय में आता है और इसमें सूत गोस्वामी ये बतलाते हैं कि जितने भी अवतार हैं वो सब श्री कृष्ण से ही आते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं। और समय समय पर ये भिन्न भिन्न अवतार भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं असुरों को अर्थात इंद्र के शत्रुओं को का या दमन करने के लिए, उनकी उनका वध करने के लिए। अब ये श्लोक श्रीमद् भागवत में कब आता है, क्या प्रसंग चल रहा है जबकि सूत गोस्वामी एते चांस कला पुंस ये श्लोक कहते हैं? जब नैमिषारण्य में एकत्र हुए जो ऋषिगण थे वो सूत गोस्वामी से अनेक प्रश्न कर चुके थे, उनमें से एक प्रश्न ये था कि परम सत्य भगवान ने कितने अवतार लिए और उनके क्या नाम थे, उनके क्या कार्य थे, हम ये सब जानना चाहते हैं। वैसे ऋषियों ने अनेक प्रश्न किए थे, उनमें से ये एक प्रश्न था भगवान के अवतारों के बारे में। तो उस समय सूत गोस्वामी ने 22 अवतारों का वर्णन किया था संक्षेप में। नाम लेते हुए उनके कार्यों का संक्षिप्त रूप में उन्होंने वर्णन किया, हर एक अवतार के बारे में एक एक श्लोक या ऐसे उन्होंने वर्णन किया। और इनमें इन 22 अवतारों में 19 और 20 नंबर पे श्री बलराम और श्री कृष्ण है, तो कृष्ण भी इन अवतारों में गिने जाते हैं। तो जैसे ही सूत गोस्वामी ने इन 22 अवतारों का वर्णन किया और फिर बाद में उनको उन्होंने बताया कि इन अवतारों की कोई गणना नहीं कर सकता, असंख्य अवतार हैं, जैसे कि समुद्र में लहरों की संख्या कोई गिन नहीं सकता है, ठीक उसी प्रकार से भगवान के जितने भी अवतार हैं उनकी संख्या हमारे गणना शक्ति के बाहर है। सूत गोस्वामी के मन में, ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं, ये थोड़ा एक संकोच संदेह आया कि मैंने तो 22 अवतारों का उल्लेख किया है और ये भी कहा कि अवतारों की संख्या तो अनगिनत है, फिर भी इसमें श्री कृष्ण का जो प्रमुख स्थान है उसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, तो श्री कृष्ण और इन अवतारों का संबंध क्या है? क्या श्री कृष्ण भी अन्य अवतारों के समान ही हैं, वो भी उनमें से ही एक ही हैं, या वो भी एक होते हुए भी कोई विशेष हैं? इस बात का स्पष्टीकरण कराना चाहते थे सूत गोस्वामी, इसलिए उन्होंने ये श्लोक कहा, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका शब्दार्थ करके देखते हैं। एते च अंश कला पुंस, अब एते मतलब ये सब, कौन सब, ये सारे अवतार जिनका उल्लेख या जिनका वर्णन सूत गोस्वामी अभी अभी कर चुके हैं। तो इनका वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी कहते हैं, एते चांस एते च, ये जितने भी अवतार हैं। अब याद रखिए सूत गोस्वामी ने क्योंकि क्रमानुसार इनका वर्णन किया था तो इसमें कृष्ण भी आए थे, तो इसलिए अब सूत गोस्वामी कहना चाहते हैं ये जितने भी सारे अवतार हैं एते ये क्या है, अंश च कला, किनके अंश हैं या अंशों के अंश हैं जिनको कला कहते हैं, किनके पुंसः भगवान के। अब कौन से भगवान के, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पुंसः मतलब पुरुष अवतार। आप तो जानते हैं कि तीन विष्णु हैं इस भौतिक सृष्टि में, उनके नाम क्या हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, इनको पुरुष अवतार कहते हैं। और इन पुरुष अवतारों में से प्रमुख कौन से हैं, कौन है, महाविष्णु, जिनको कारणोदकशाय विष्णु भी कहते हैं या इनको महापुरुष भी कहते हैं, क्योंकि ये तीनों पुरुष अवतारों में से प्रमुख हैं। क्यों प्रमुख हैं, क्योंकि महाविष्णु से आते हैं गर्भोदकशाय विष्णु और फिर क्षीरोदकशाय विष्णु। तो इन तीनों पुरुष अवतारों में से प्रमुख हैं महाविष्णु या महापुरुष। तो ऐसे बताया जाता है, कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में कि भगवान श्री कृष्ण के अनेक विस्तार हैं जो कि उनके अंश हैं, और जो अंश के अंश होते हैं उनको कला कहते हैं। तो बलराम जी भगवान के ही प्रतिरूप हैं, और बलराम जी के जो प्रथम अंश हैं वो है महासंकर्षण। महासंकर्षण के भी अंश हैं ये महाविष्णु या महापुरुष या कारणोदकशाय विष्णु। फिर इनसे कविराज गोस्वामी बताते हैं, भागवत में भी ऐसे ही वर्णन है कि जितने भी अवतार हैं वो सब प्रकट होते हैं। नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम, ऐसे सूत्र गोस्वामी भागवत में वर्णन करते हैं कि जितने भी अवतार हैं उन सब के अव्यय बीज हैं ये महाविष्णु या गर्भोदकशाय विष्णु। जैसे यथा मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, तो ये जितने भी अवतार हैं मत्स्य कूर्म आदि वो सब पुरुष अवतारों से ही प्रकट होते हैं। तो इसलिए एतच अंश कलह पुंसः का मतलब है कि ये सारे अवतार महाविष्णु से आते हैं, पुरुष अवतारों से उत्पन्न होते हैं। वो या तो पुरुष अवतारों के अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं, कला हैं। परंतु ये तु शब्द आता है संस्कृत में, इसके कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन इस श्लोक में इसका अर्थ है परंतु। ये सारे अवतार पुरुष अवतारों के अंश या उनके अंशों के अंश हैं, परंतु ये परंतु शब्द जब आता है ना, फिर हम रुक जाते हैं कि हाँ अब कोई बात बदल रही है। जैसे हम कहते हैं कि ये सब देश के निवासी हैं, परंतु परंतु क्या ये राजा है? राजा भी देश का निवासी है, परंतु एक विशेष निवासी है, इसलिए परंतु शब्द कहा जाता है। ये सब देश के निवासी हैं, परंतु ये राजा है। इसका मतलब ये नहीं कि राजा देश का निवासी नहीं है, वो है, परंतु बहुत विशेष निवासी है, इसलिए परंतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। और एक उदाहरण, ये सब धनी व्यक्ति हैं, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, परंतु ये व्यक्ति अरबपति है। वो भी धनी है, लेकिन धनियों में से भी वो एक बहुत विशेष माना जाता है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी विदेश में हवाई अड्डे पे थे, तो किसी दूसरी जगह में जा रहे थे हवाई जहाज से, तो अनेक भक्त उनको विदाई देने के लिए वहां आए थे हवाई अड्डे में। तो भक्तों की बहुत बड़ी भीड़ हो गई थी और हवाई अड्डे के अधिकारी व्यक्ति थोड़े विचलित हो गए थे। तो उन्होंने भक्तों से कहा, कुछ आप लोग ठीक ठाक बैठे रहिए, आप इतने सारे बड़े संख्या में आए हैं, सब जगह घूम रहे हैं। तो फिर वहां एक जो भक्त थे वो खड़े हो गए कुर्सी के ऊपर और सारे भक्तों को इकट्ठा बुलाया और कहा कि यहाँ हवाई अड्डा है, यहाँ का जो शिस्त है इसका पालन करना चाहिए। तो आप सारे भक्त जो है वो इस तरफ आ जाइए, आप यहाँ पर रहिए और प्रभुपाद यहाँ रहेंगे, क्योंकि वो सब भक्तों को इकट्ठा लाना चाहते थे ताकि एक जगह आ जाए, ताकि हवाई अड्डे के वहां कार्यकलापों में कोई असुविधा ना हो। तो उन्होंने जब कहा कि सारे भक्त यहाँ इस तरफ आ जाइए, प्रभुपाद यहाँ रहेंगे, तो प्रभुपाद ने क्या पूछा, क्या मैं भक्त नहीं हूं? क्योंकि भक्त ने क्या घोषणा की थी, सारे भक्त यहाँ और प्रभुपाद यहाँ। तो प्रभुपाद ने पूछा कि क्या मैं भक्त नहीं हूं? आपने भेद किया, सारे भक्त यहाँ प्रभुपाद यहाँ, नहीं, वो भक्त का भक्त कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं था, परंतु कहने का तात्पर्य ये था कि सब भक्त हैं लेकिन प्रभुपाद विशेष भक्त हैं, संस्थापक आचार्य हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, वो गुरु हैं सबके। तो ऐसे सब भक्त यहां रहेंगे परंतु प्रभुपाद यहां रहेंगे, तो प्रभुपाद भी भक्त हैं लेकिन परम भक्त हैं। तो जब हम इस तरह से भेद करना चाहते हैं तो हम परंतु शब्द का भी प्रयोग करते हैं। तो एते च अंश कला पुंस, ये जितने भी अवतार हैं वो सब महापुरुष महाविष्णु के अंश हैं या उनके कला हैं, परंतु क्योंकि अब कृष्ण भी इन 22 अवतारों में उनका उल्लेख आता है, तो अब सूत गोस्वामी स्पष्ट करना चाहते हैं कि ठीक है कृष्ण का नाम भी अवतारों में आता है लेकिन फिर भी कृष्ण विशेष है। कृष्ण भी अवतार क्यों है, अवतरति इति अवतार है, जो अवतीर्ण होते हैं, जो उतर के आते हैं भगवान के धाम से, वो अवतार माने जाते हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण को अवतार कहना गलत नहीं है, फिर भी अन्य अवतारों के बिल्कुल समान नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कृष्ण और अवतारों में कोई भिन्नता नहीं है, फिर भी कृष्ण से ये सारे अवतार उत्पन्न होते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परंतु कृष्ण जिनका उल्लेख इन 22 अवतारों में किया गया है वो स्वयं भगवान है। ये सब अवतार हैं परंतु कृष्ण अवतारों के स्रोत हैं, ये सब भगवान हैं परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान मतलब भगवान मूल भगवान, बाकी सब भी भगवान है, मत्स्य भी भगवान है, कूर्म देव भी भगवान है, महाविष्णु भी भगवान है, सब भगवान है, परंतु कृष्ण का स्थान विशेष है क्योंकि वो मूल रूप है भगवान के, आदि रूप है भगवान के। दीपाचिरे वहि दशांतरमभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्तात्रिगे वहि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं एक दीप से अनेक दीप प्रज्वलित किए जा सकते हैं, और जितने भी सारे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं पहले दीप के द्वारा, वो सब पहले दीप के समान ही शक्तिशाली होते हैं, समान धर्मा। अभी 100 दीप यदि हो तो बाकी 99 दीप भी पहले दीप के समान ही प्रकाश मान लेते हैं, उतना ही प्रकाश देते हैं, उतने ही शक्तिशाली होते हैं, फिर भी जो पहला दीप है वो पहला दीप, क्योंकि उस दीप से ही 99 अन्य दीप प्रज्वलित हो गए थे। उनकी शक्ति एक जैसी है लेकिन मूल दीप एक है, ठीक उसी प्रकार से असंख्य अवतारों के स्रोत या उद्गम श्री कृष्ण हैं। वृंदावन में रहने वाले श्याम सुंदर गोविंद श्री कृष्ण, इसलिए उनको स्वयं भगवान कहा गया है। तो श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और वो अपने आप को विस्तार कर लेते हैं और अनगिनत उनके विष्णु तत्व रूप आ जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी कुछ है अस्तित्व में वो सब श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण से भिन्न कुछ नहीं है। या तो वो स्वयं श्री कृष्ण हैं या श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। श्री कृष्ण के विस्तारों में प्रभुपाद जी कहते हैं दो विभाग हैं, स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश मतलब जितने भी विष्णु तत्व हैं जो भगवान के स्तर पे हैं, जैसे नारायण भगवान हैं और संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, फिर ये तीन पुरुष अवतार इत्यादि, ये सब स्वांशों में गिने जाते हैं क्योंकि ये भगवान के स्तर में हैं, ये विष्णु तत्व कहे जाते हैं। परंतु इससे विपरीत वो हैं जो विभिन्नांश कहलाते हैं, जो भगवान से थोड़े भिन्न हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, और वो सब जीव हैं। तो जीव तत्व को विभिन्नांश कहते हैं और विष्णु तत्वों को स्वांश कहते हैं। तो चाहे जीव हो, चाहे विष्णु तत्व हो, चाहे भगवान की भौतिक शक्ति हो, उनकी आध्यात्मिक शक्ति हो, सब कुछ भगवान के अंतर्गत आता है। जब भगवान या श्री कृष्ण हम कहते हैं तो ये कृष्ण शब्द के अंतर्गत ये सारे चीजें आती हैं। तो कृष्ण से भिन्न, कृष्ण से बाहर कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, सब कुछ कृष्ण ही है इस दृष्टि से देखा जाए तो। परंतु इसका भी स्पष्टीकरण करना चाहिए, कृष्ण सब कुछ है लेकिन सब कुछ कृष्ण नहीं है। कृष्ण सब कुछ है क्यों? क्योंकि कृष्ण से ही सब कुछ आता है, कृष्ण से भिन्न कुछ नहीं है। या तो कृष्ण का विस्तार है कुछ, या कृष्ण की शक्ति है, या शक्ति का विस्तार है। इसलिए कृष्ण सब कुछ है परंतु सब कुछ कृष्ण नहीं है। क्योंकि यदि हम मानते थे कि सब कुछ कृष्ण है तो फिर हम इस माइक्रोफोन को या इस दीवार को भगवान कह के पूजा करते, आरती करते, कोई पत्थर सड़क से उठा के ये भी भगवान है, सब कुछ भगवान है। एक बहुत बड़े साधु रहे थे, बड़े मतलब बहुत प्रसिद्ध थे भारत में, तो उनका एक वाक्य ऐसा है कि क्योंकि सब कुछ परम सत्य है, आप किसी की उपासना कर सकते हैं, एक भैंस की भी कर सकते हैं, लेकिन भागवत धर्म का तत्व ऐसे नहीं है। हाँ, भैंस भी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न इस दृष्टि से है कि भैंस भी भगवान की शक्ति है, भगवान का विस्तार है, भैंस भी भगवान के बाहर नहीं है, भगवान शब्द के अंतर्गत आ जाता है, परंतु भैंस भगवान नहीं है। तो ये भेद करना बहुत आवश्यक है। तो भगवान परम सत्य है, श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं। तो ये जो विस्तार की जो एक बात है, ये केवल भागवत धर्म में पाई जाती है, अनेक धर्म है इस धरती पर, लेकिन भगवान और हर एक धर्म में भगवान को मानते हैं। परंतु भगवान का ऐसे विस्तार होता है, एक रूप में नहीं, अनेकों में रूपों में, ये बात कहीं और नहीं पाई जाती है। और यदि हम केवल स्वांशों की बात करें, जो भगवान अपने आप को विष्णु तत्वों में ही विस्तार करते हैं, तो ये भी बात समझ के बाहर आते हैं अनेक लोगों को। बहुत सूक्ष्म गुह्य बात है ये। चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जो विष्णु तत्व विस्तार हैं, उनके दो प्रमुख विभाग हैं, एक है प्रकाश और दूसरा है विलास।
प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह के बारे में कविराज गोस्वामी बताते हैं, एक ही विग्रह यदि होय बहुरूप, आकारे तो भेद नहीं
एक ही स्वरूप।
वो कहते हैं कि एक ही विग्रह,
एक ही रूप है भगवान का, जैसे श्री कृष्ण है, उनमें से जब बहुरूप विस्तारित हो जाते हैं और आकार में भेद नहीं है उनका, स्वरूप और विग्रह एक ही है और आकार भी एक ही है, तब वो जो भगवान के भिन्न भिन्न रूप हैं, उनको प्रकाश विग्रह कहते हैं। भगवान के उदाहरण देने से इसका और स्पष्टीकरण होगा। इसके लिए दो उदाहरण कविराज गोस्वामी लेते हैं। एक उदाहरण है रासलीला का। जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला करना चाहते थे तो उन्होंने देखा कि गोपियों की संख्या बहुत ज्यादा है और भगवान श्री कृष्ण हरेक गोपी की इच्छा पूर्ण करना चाहते थे। हरेक गोपी चाहती थी कि मैं श्री कृष्ण से रासलीला करना चाहती हूँ और भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से समर्थ हैं हरेक जीव की इच्छा पूर्ण करने के लिए। यह भौतिक जगत में हम असमर्थ हैं, एक को प्रसन्न करते हैं तो दूसरे अप्रसन्न हो जाते हैं, दो को प्रसन्न करते हैं तो तीसरे अप्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, क्षुद्र जीव हैं, हमारी सामर्थ्य की बहुत बड़ी सीमा है। परंतु भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से समर्थ हैं, इसलिए वो हरेक गोपी की इच्छा पूर्ण करना चाहते थे तो कर भी दिया। उन्होंने कैसे किया? श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण ने अपने आप को इस तरह से विस्तार किया कि दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण रह गए और ऐसे रासलीला रचाई भगवान ने। और हरेक गोपी ने यही सोचा कि मैं अकेली श्री कृष्ण के साथ में रासलीला कर रही हूं। तो कितने सारे कृष्ण हुए, स्वरूप और विग्रह एक ही था, वही श्री कृष्ण थे, वृंदावन के श्याम सुंदर कृष्ण। आकार में भी कोई भेद नहीं था, बिल्कुल दिखने में वैसे के वैसे थे, तो इनको प्रकाश विग्रह कहते हैं। तो भगवान के जितने भी हजारों लाखों प्रकाश हुए या विस्तार हुए रासलीला में, अनेक कृष्ण जो थे वो प्रकाश विग्रह कहलाते हैं कृष्ण। तो यदि कोई कहे ये बहु ईश्वरवाद है, इतने सारे कृष्ण एक साथ हुए, ये बहु ईश्वरवाद नहीं है। उनका स्वरूप, उनका विग्रह एक ही था और आकार भी एक ही था। सर्वशक्तिमान भगवान ऐसे कर सकते हैं और करते भी हैं। और दूसरा उदाहरण कविराज गोस्वामी देते हैं वो है राज महिषियों का द्वारका में। जब श्री कृष्ण ने द्वारका में 16,000 राजकुमारियों से विवाह करना चाहा तो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं हुई। यहाँ एक व्यक्ति को एक महिला से विवाह करना होता है तो कितनी बड़ी बात हो जाती है, कितनी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है शुरुआत से भी और विवाह के दौरान भी और बाद में क्या हो तो अलग बात है, लेकिन तैयारी के लिए भी कितने तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन श्री कृष्ण को कोई कठिनाई नहीं हुई, 16,000 राजकुमारियों के साथ में एक साथ उन्होंने विवाह किया। अब 16,000 रानियों से विवाह करते करते श्री कृष्ण ने अपने आप को 16,000 रूपों में विस्तारित कर लिया और वही कृष्ण द्वारका में जैसे थे वैसे। ऐसा नहीं कि एक रानी के साथ कृष्ण एक तरह से दिखते थे और दूसरे ही कृष्ण कोई थे, दूसरे रानी के साथ दिखने में कुछ अलग थे, नहीं। वैसे के वैसे वही श्री कृष्ण 16,000 कृष्ण हो गए और उन्होंने एक ही समय पर अलग अलग स्थानों में अलग अलग रानियों के साथ में विवाह कर लिया। ये भी एक दूसरा उदाहरण है प्रकाश विग्रह का। श्रील कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जो बड़े योगी होते हैं जैसे सौभद्र मुनि या कर्दम मुनि, वो भी अपने शरीर का विस्तार कर सकते हैं अपने योग सिद्धि के द्वारा। जैसे कर्दम मुनि ने अपने आप को 9 रूपों में विस्तार किया था अपने शरीर को, ऐसे भागवत के 3रे स्कंध में वर्णन है। उसी प्रकार से सौभद्र मुनि ने अपने आप अपने देह का विस्तार 8 तरह से किया, 8 रूपों का विस्तार किया, परंतु 8 या 9 इससे ज्यादा विस्तार नहीं कर सकता है कोई भी योगी। कृष्ण भी योगी है, योगेश्वर है, योगियों के भी ईश्वर है। यत्र योगेश्वर है कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरः। तो योगेश्वर कृष्ण को यदि विस्तार करना है तो 8 या 9 की कोई सीमा नहीं होती। 16,000 रूपों को उन्होंने विस्तार कर लिया। नारद मुनि जब द्वारका आए थे तो उन्होंने ये दृश्य देखा और वो चकाचौंध हो गए। सौभरी मुनि और कर्दम मुनि के विस्तार को देख के नारद मुनि को कोई आश्चर्य नहीं हुआ और प्रभुपाद जी श्री चैतन्य शिक्षामृत में बताते हैं कि इसका कारण क्या है। नारद मुनि ने जब सौभरी मुनि और कर्दम मुनि के विस्तारों के बारे में सुना तो उनको आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नारद मुनि को ये कला स्वयं पता है। नारद मुनि चाहे तो स्वयं अपने आप को 8 या 9 भागों में विस्तार कर सकते हैं, उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने द्वारका में श्री कृष्ण को देखा तब वास्तव में उनको आश्चर्य हुआ, चकाचौंध रह गए नारद मुनि। और इसके बाद में विवाह के बाद में भी उन्होंने देखा कि हरेक राजमहल में श्री कृष्ण अलग अलग कार्य कर रहे थे अलग अलग रानियों के साथ। तो ये है प्रकाश विग्रह, जहां आकार का भी भेद नहीं होता है। स्वरूप और विग्रह तो एक ही है परंतु आकार भी भिन्न नहीं है।
और फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि
दूसरे प्रकार के उनके विस्तार है जिनको विलास विग्रह कहते हैं। एक ही विग्रह किंतु आकार होय आन,
अनेक प्रकाश होय
विलास तारना। जब एक ही भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं और उन विस्तारों का स्वरूप एक ही होता है परंतु आकार भिन्न होता है, तो ऐसे विस्तारों को विलास विग्रह कहते हैं। तो विग्रह या स्वरूप एक ही है, वो भगवान ही है, कृष्ण ही है, फिर भी आकार में थोड़ा अंतर है।
और इनके उदाहरण देते हैं, वो बताते हैं जैसे बलदेव,
नारायण, चतुर्विध संकर्षक, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि, ये सब विलास विग्रह कहलाते हैं। ये भी सब स्वरूप में एक ही है अर्थात कृष्ण ही है। तो नारायण, विष्णु, मत्स्य, कूर्मा, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध, सब वो कृष्ण ही है परंतु आकार में भिन्न है। अधिकतर ये सब चतुर्भुज हैं और श्री कृष्ण द्विभुज है। तो विलास विग्रहों में से सबसे प्रथम जो भगवान के रूप है वो है बलदेव या बलराम। तो ये है बलराम का परिचय। तो इतना सब हमें श्री कृष्ण के बारे में कहा क्यों, ताकि हम इस दृष्टि से समझ लें कि बलदेव कौन है। बलदेव भगवान श्री कृष्ण के, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पहले विलास विग्रह है। प्रकाश विग्रह क्यों नहीं है? तो बलराम जी प्रकाश विग्रह इसलिए नहीं है क्योंकि बलराम और श्री कृष्ण में आकार में अंतर है। अंतर वास्तव में आकार में एक ही है, वो क्या है? रंग। श्री कृष्ण सांवले हैं, बलराम जी गोरे हैं, सफेद। बस इतना ही अंतर है दोनों में। फिर भी जितने भी विलास विग्रह हैं उन सब में से पहले, सबसे पहले है बलदेव। केवल कृष्ण और बलदेव विभुज होते हैं, बाकी जितने भी विलास विग्रह हैं वो सब चतुर्भुज होते हैं अधिकतर।
तो फिर आगे कविराज गोस्वामी बताते हैं,
सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण कौन है? सर्व अवतारी स्वयं भगवान। सर्व अवतारी अवतारों के उद्गम है अवतारी, तो श्री कृष्ण है सर्व अवतारी और दूसरी बात स्वयं भगवान। तो सर्व अवतारी स्वयं भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। तो बलराम जी श्री कृष्ण के द्वितीय देह हैं। विलास विग्रहों में से उनके स्वांश रूपों में से सर्वप्रथम बलराम जी हैं, ये कविराज गोस्वामी यहां कह रहे हैं। तो विलास विग्रह क्यों है वो बताते हैं। एकै स्वरूप तो है भिन्न मात्र काय, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय। बलराम जी और कृष्ण एकै स्वरूप तो है, दोनों का स्वरूप एक ही है, आइडेंटिटी दोनों की पहचान एक ही है, परंतु भिन्न मात्र का है। काय मतलब शरीर, केवल उनका आकार थोड़ा भिन्न है, इतना ही है। बलराम जी गोरे हैं, श्री कृष्ण सांवले हैं, बस।
आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय।
आद्य काय व्यूह, व्यूह मतलब विस्तार, तो बलराम जी भगवान कृष्ण के प्रथम सर्वप्रथम विस्तार हैं, आद्य काय व्यूह। तो ऐसे काय व्यूह क्यों है बलराम जी? भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है, उन्होंने अपने आप को बलराम जी के रूप में विस्तार क्यों किया है? लीला रसहाय, श्री कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए बलराम जी प्रकट हुए हैं, उनके प्रथम रूप हैं,
प्रथम विस्तार हैं। और फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं,
श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप ध्वरी करे न कृष्ण रसेवन। तो श्री बलराम जी हैं मूल संकर्षण और पंच रूप ध्वरी करे न कृष्ण रसेवन, और कृष्ण की सेवा करने के लिए वो पांच रूप धारण करते हैं। तो बलराम जी मूल संकर्षण है, तो उनसे पांच ऐसे रूप उत्पन्न होते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि पांच रूप कौन से हैं। पहले तो स्वयं बलराम है, और फिर उनसे उत्पन्न होते हैं महासंकर्षण। बलराम जी कौन है? मूल संकर्षण। मूल संकर्षण से आते हैं महासंकर्षण। फिर जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, महासंकर्षण से आते हैं महाविष्णु, फिर उनसे आते हैं गर्भोदकशाय विष्णु, उनसे आते हैं क्षीरोदकशाय विष्णु, और फिर है शेष। तो महासंकर्षण, फिर महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु, ये चार भौतिक सृष्टि से संबंध उनका उनका संबंध है, और अनंत शेष जो है उनका कार्य है भगवान को की विजय सेवा करना, स्वयं सेवा करते हैं भगवान के, अनंत को जानते हैं और भगवान शयन करते हैं तो अनंत उनका उनकी शैया बन जाते हैं, तो शेष जो है वो भगवान की निजी सेवा करते हैं। तो ऐसे पांच रूपों में बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं और स्वयं बलराम भी वृंदावन में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। हरे रस में बलराम जी सेवा करते हैं। बलराम जी कैसे अनेक रसों में भगवान की सेवा करते हैं वृंदावन में? सभी लीलाओं में है, लेकिन पांच रसों में कैसे सेवा करते हैं भगवान बलराम जी? कौन से रस हैं? पांच रस मुख्य रसों में से
शांत रस,
पहले है शांत रस। तो शांत रस में बलराम जी कैसे सेवा करते हैं श्री कृष्ण की? उनके वस्त्र बनते हैं, उनकी शैया बनते हैं, उनके आभूषण बनते हैं, उनकी बांसुरी बनते हैं, और बल्कि वो सारा गोलोक वृंदावन ही बन जाते हैं। तो गोलोक वृंदावन धाम जो है ये बलराम जी का प्राकट्य है। गोलोक वृंदावन नहीं होता, कोई एक स्थान नहीं होता कृष्ण के लिए, तो वो लीला कैसे करते हैं? तो श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, फिर बलराम जी शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं इस तरह से। तो शांत के आगे क्या है? दास्य रस। तो दास्य रस में बलराम जी कैसे सेवा करते हैं कृष्ण के? जब श्री कृष्ण थक जाते हैं गोचारण करते समय और बाल बाल मित्रों के साथ क्रीड़ा करने के बाद, तो बलराम जी कभी कभी उनको पंखा पंखा से हवा दिलाते हैं, कभी कभी चरण मालिश करते हैं। तो दास्य रस में भी बलराम जी सेवा करते हैं कभी कभी। और फिर आगे सख्य, सख्य में कैसे सेवा करते हैं?
क्रीड़ा,
क्रीड़ा में बाल बालों के साथ कृष्ण बलराम दोनों क्रीड़ा करते रहते हैं। जब मानो कि कृष्ण बलराम दोनों ही ग्वाल बाल ही हैं। और फिर आगे वात्सल्य में
रक्षा
करते हैं, और जब कोई बात आती है तो बलराम जी कहते हैं कृष्ण अभी संभालना, अभी वहां नहीं जाना, देखो वहां खतरा है। जैसे माता पिता कभी कभी बच्चों को ऐसे चेतावनी देते हैं कि देखो ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, बलराम जी कभी कभी बड़े भाई होने के नाते वो ऐसे कृष्ण की रक्षा के लिए कुछ ऐसे आदेश देते हैं, या तो स्वयं श्री कृष्ण को आदेश देते हैं या किसी दूसरे ग्वाल बाल को कहते हैं कि देखो आज कृष्ण की अच्छा रक्षा करना, मुझे थोड़ा काम है, मैं आज गोचारण में नहीं आऊंगा, तो तुम कृष्ण की रक्षा करना। देखो अनेक दुष्ट असुर वगैरह वहां पर आते हैं वन में। तो ऐसे वात्सल्य रस में भी बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और फिर माधुरी रस में, माधुरी रस में कैसे सेवा करते हैं? गोपी बनते हैं। कौन सी गोपी? अनंग मंजरी। वो मंजरी है ये गोपी, श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन। तो बलराम जी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन बन जाते हैं अनंग मंजरी नाम लेकर। मंजरियां वो गोपियां होती हैं जो बड़े गोपियों की सहायता करती है। बड़ी मतलब जो किशोरी हैं लेकिन उनसे भी कम उम्र की होती है, उनकी सहायता करती है। तो बलराम जी अनंग मंजरी बन जाती है। तो इस तरह वृंदावन में बलराम जी ऐसे पांचों रसों में श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, लीला रस सहाय। और फिर वृंदावन के बाहर बलराम जी ऐसे सेवा करते हैं महासंकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, शिरोदकशाय विष्णु और अनंत शेष, ऐसे बलराम जी सेवा करते हैं। इसलिए बलराम जी को सेवक भगवान कहा गया है। कृष्ण सेव्य भगवान है, ये वो भगवान जिनकी सेवा की जाती है। बलराम जी भी भगवान ही हैं, परंतु उनका रूप इसलिए बना है ताकि वो कृष्ण की सेवा करें, इसलिए उनको सेवक भगवान कहते हैं। तो कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम सेवक भगवान है। वृंदावन मथुरा में भी ऐसे कृष्ण बलराम ने कई लीलाएं की हैं, जिनसे उनका परिचय भी ठीक पता चला। वृंदावन में ग्वाल बालों के साथ लीला करते करते वृंदावन के निवासियों को कभी ऐसे लगा नहीं कि ये भगवान है, परंतु मथुरा में उन्होंने अपने थोड़े ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया जिससे कि सबको पता चला कि वो भगवान है। वृंदावन में भी तो ऐश्वर्य और शक्ति का प्राकट्य कृष्ण का हुआ अवश्य, बलराम जी का भी हुआ, जैसे कि उन्होंने ताल वन में धेनुकासुर का वध किया इत्यादि। फिर भी वृंदावन धाम में माधुर्य इतना है कि ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण और बलराम को उनके प्रिय ग्वाल बाल के सिवाय और कुछ नहीं समझा। लेकिन जब मथुरा से अक्रूर जी आए वृंदावन में, तब फर्क पड़ा। जैसा कि आपको पता है, कंस ने श्री कृष्ण की हत्या करवाने के लिए अनेक असुरों को भेजा था वृंदावन, लेकिन कृष्ण की हत्या तो हुई नहीं, कैसे हो सकती थी। कृष्ण ने और बलराम ने बल्कि इन सारे असुरों को बड़े आसानी से मार डाला। तो कंस बड़े चिंतित होता जा रहा था कि भाई क्या किया जाए इस समय। तो कंस ने एक षड्यंत्र रचाया और अक्रूर से कहा कि जाओ, मल युद्ध के नाम पर कृष्ण बलराम को यहाँ बुला ले आओ, और यहाँ चारों मुष्टिक आदि जो बलवान योद्धा हैं, मल योद्धा है, उनके साथ पहलवान हैं, उनके साथ में युद्ध कराएंगे और कृष्ण बलराम दोनों को हम खत्म कर डालेंगे। और फिर अक्रूर जी जब आए पहुंचे वृंदावन में, तो कृष्ण बलराम को ले जाने के का प्रस्ताव जब ब्रजवासियों के सामने रखा गया तो वो बड़े दुखी हो गए। लेकिन फिर भी कृष्ण बलराम ने स्वयं सांत्वना दे दी सारे ब्रजवासियों को कि कंस तो राजा है और अक्रूर जी हम आए हैं, तो हमें जाना होगा, हमारे कर्तव्य को निभाना होगा, लेकिन शीघ्र ही हम लौट के चले आएंगे। तो बिल्कुल तैयार नहीं थे ब्रजवासी कृष्ण और बलराम को छोड़ने के लिए, परंतु मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा उनको। और जब अक्रूर जी अपने रथ में बिठा के कृष्ण बलराम को ले जा रहे थे, वो यमुना तक पहुंचे और उस स्थान पर पहुंचे जिस स्थान को आज अक्रूर घाट कहा जाता है। अक्रूर घाट में उन्होंने रथ को रोका और सोचा कि चलो अब थोड़ा विश्राम किया जाए, स्नान आदि किया जाए। तो कृष्ण बलराम वहां उतरे, उतर के वो यमुना में स्नान करने गए। स्नान करने के बाद लौट के रथ में चले आए। फिर अक्रूर जी ने उन दोनों से अनुमति ले ली और स्वयं स्नान करने के लिए गए। और जब स्नान करने गए तो उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि जल में कृष्ण बलराम हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे है, अभी अभी तो मैंने उन दोनों को रथ में देखा था और अब मैं यहाँ इन दोनों को जल में देख रहा हूँ, कैसे संभव है। फिर जल्दी से वो रथ में वापस चले गए और देखा कि कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं। तब अब उनका सर चकराने लगा कि दोनों जगह ये दोनों बच्चे कैसे हो सकते हैं। फिर से वापस वो जल में गए जल्दी से, और वहां फिर से उन्होंने कृष्ण बलराम को जल में देखा। लेकिन इस समय कृष्ण बलराम ने अपना रूप बदल लिया था, श्री कृष्ण महाविष्णु बन गए थे और बलराम जी अनंत शेष बन गए थे। तो महाविष्णु शयन कर रहे थे, चतुर्भुज रूप में थे और सिद्ध चारण आदि देवों के द्वारा पूजित थे और बलराम जी पर जो कि अब शेषनाग बने थे उन पर शयन कर रहे थे। शेषनाग के कंठ आदि हिमालय पर्वत के हिम से भरे हुए शिखरों के समान सफेद दिखाई पड़ रहे थे। बड़ा सुंदर दृश्य था और अक्रूर जी ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए, हाथ जोड़ के बस खड़े रह गए और स्तब्ध होकर वहां वापस चले आए और देखा कि कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं। तो उनका चेहरा देख के, जब ऐसे कोई दृश्य देखेगा अगर चेहरे पे, तो फिर कुछ फर्क पड़ेगा ना, या दूसरा व्यक्ति उनका चेहरा देखेगा तो वो अवश्य जान पाएगा और पूछेगा कि भाई क्या बात है, चेहरे से कुछ दिख रहा है कि कुछ आश्चर्य की बात दिखी है। तो कृष्ण भी मजाक उड़ाना चाहा अक्रूर का और अक्रूर से पूछा, अरे मामा ऐसे कुछ लग रहा है कि आपने कुछ ऐसे आश्चर्यजनक दृश्य को देखा है। तो अक्रूर जी ने बड़े शांति से उत्तर दिया, अब आश्चर्य की क्या बात है, जो भगवान से सब कुछ उत्पन्न होता है, यहाँ है वहां है, उनके लिए आश्चर्य की बात क्या है। तो अक्रूर ने भी ऐसी बातों पर टाल दी इस चीज। और अब जब वो कृष्ण बलराम को मथुरा ले गए, उनको तो पूरा विश्वास था कंस क्या बिगाड़ सकता है, कृष्ण बलराम स्वयं की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। तो ऐसे अक्रूर को कृष्ण बलराम ने अपना जो मूल परिचय है वो करा के दिया। मथुरा जाने के बाद भी बलराम जी थोड़े समय के बाद लौट के आए, क्योंकि वो सारे ब्रजवासियों को सांत्वना देना चाहते थे जो कि बहुत दुखी थे कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद। वो नंद महाराज से मिले, माता यशोदा से मिले, रोहिणी देवी से मिले, अन्य गोप गोपियों से मिले, और इतना ही नहीं, ऐसे भी कहा जाता है कि बलराम जी ने अपनी रासलीला वहां की वृंदावन में। लेकिन जिन गोपियों के साथ में बलराम जी ने रासलीला की वो कृष्ण की गोपियों से भिन्न है, क्योंकि ये रसाभास है, रस का भेद है। जो श्री कृष्ण की गोपियां हैं वो बलराम जी को श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में जानते थे, इसलिए बड़े आदर पूर्वक सम्मान से उनसे व्यवहार करते थे, जैसे देवर से, बड़े देवर से कोई महिला करती है घर में व्यवहार वैसे। परंतु बलराम जी की गोपियां, इनका दल अलग है। तो इनके साथ इन्होंने 2 महीने रह के यहाँ रासलीला की, इसलिए बलराम जी भी रासलीला करते हैं, वो भी बांसुरी बजाते हैं, लेकिन कृष्ण की तरह बांसुरी नहीं बजा सकता है कोई, और कृष्ण की तरह रासलीला कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे बलराम जी बाद में आए, एक बार जब वो रासलीला करते करते वो वारुणी पेय पीकर कुछ उत्तेजित हो गए थे, यमुना में स्नान करना चाहते थे, क्रीड़ा करना चाहते थे, तो उन्होंने यमुना जी से कहा कि आओ यहाँ पास में आ जाओ, हम स्नान करना चाहते हैं, जल क्रीड़ा करना चाहते हैं। तो यमुना जी ने बात को माना नहीं, तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने अपने हल को लेकर जमीन में खींच लिया और इससे यमुना जी का जल यहाँ चले आया। यमुना जी जो एक नदी है वो छोटे 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 नदियों में बट गई। यमुना जी से बहुत डर गई और अपने देवी स्वरूप में बलराम जी के सामने प्रकट होकर क्षमा याचना करने लगी। फिर बलराम जी ने क्षमा कर दी यमुना जी को। इस तरह से बलराम जी ने यहाँ वृंदावन में लीला की वापस और फिर से चले गए लौट के मथुरा और आगे चल के द्वारका। आज शाम को भी हम बलराम जी के प्राकृत्य के बारे में कुछ सुनेंगे। और थोड़ी बहुत उनकी लीलाओं के बारे में। बलराम जी आदि गुरु होने के कारण हमारे लिए बहुत विशेष रूप से पूज्य हैं। यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक सृष्टि में हर चीज का घटन होता है। धर्मस्य ग्लानिः, जब धर्म की ग्लानि होती है तो भगवान प्रकट होते हैं। तो धर्म की ग्लानि होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर चीज का घटन भौतिक सृष्टि में होता है और हमारे निजी जीवन में भी हमें अनुभव है। हमारे आध्यात्मिक अभ्यास में और साधन में स्वाभाविक रूप से घटन होता है। हमें ताकत लगानी पड़ती है, बुद्धि लगानी पड़ती है साधना को ठीक रखने के लिए। सही बात है ना? मन क्या कहता है कि प्रवचन नहीं जाना, और प्रवचन में बैठेंगे भी तो मन क्या कहता है, सुनने की क्या जरूरत है, थोड़ा आराम कर लेना है। और इतने माला जप करके खुद को कष्ट क्यों देना है, थोड़ा आराम से रह जाना जीवन, थोड़ा ऐश करना थोड़ा। तो स्वाभाविक रूप से इस भौतिक सृष्टि में आध्यात्मिक जीवन में भी हमारे अभ्यास में धर्म में घटन होता है और भगवान को बार बार आना पड़ता है। तो हमारे लिए गुरु परंपरा की कृपा की आवश्यकता है और इनके प्रतीक हैं बलराम जी। तो बलराम जयंती पे हम बलराम जी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमें अच्छी तरह से आध्यात्मिक बल मिल जाए। आखिर वो है बलराम, और बल ये केवल शारीरिक बल नहीं है, ये आध्यात्मिक बल है। आध्यात्मिक बल के सिवाय हम माया का सामना नहीं कर सकते। यदि हमारे अंदर आध्यात्मिक बल नहीं होगा तो हम माया के शिकार हो जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे भगवान की। लेकिन बलराम जी की कृपा जब होगी तो हम भी आध्यात्मिक दृष्टि से बलवान हो जाएंगे, फिर हमारे आध्यात्मिक साधना को हम अच्छी तरह से कर पाएंगे और भक्ति में आगे बढ़कर शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो आज बलराम जी के आविर्भाव दिवस के तिथि पर हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें ऐसे आध्यात्मिक बल कृपा करके प्रदान करें। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था कि हमें कृष्ण बलराम से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? श्री कृष्ण से आध्यात्मिक बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और बलराम जी से आध्यात्मिक बल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दोनों की आवश्यकता है, आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक बल। इसलिए कृष्ण बलराम ये हमारे लिए भी आराध्य हैं। तो आज के दिन कृष्ण बलराम, बलराम जी तो कृष्ण के साथ नहीं रहते हैं, तो कृष्ण बलराम के चरणों में हम प्रार्थना कर सकते हैं कि दोनों हमें आध्यात्मिक बुद्धि और आध्यात्मिक बल प्रदान कीजिए। और बलराम जी की सेवा विशेष रूप से गुरु परंपरा की सेवा करने से हो जाती है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो बलराम जी के प्रतिनिधि होते हैं। तो गुरु को प्रसन्न करके, गुरु के आदेशों का पालन करके हम बलराम जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और इस तरह से हम भी आध्यात्मिक जीवन में बलवान हो जाते हैं। श्री बलराम जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। तो आपके कोई प्रश्न है? हाँ जी, हाँ। प्रश्न ये है कि अभी प्रवचन में बताया गया था कि बलराम जी कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं, लेकिन दशावतार स्तोत्र में बलराम जी को दश अवतारों में से एक माना गया है। इसका उत्तर यह है कि केवल बलराम जी को नहीं, कृष्ण भी है ना उसमें। जैसे 22 अवतारों का वर्णन हमने किया ना पहले, कि सूत गोस्वामी करते हैं पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में, उसमें 22 अवतारों का उल्लेख करते हैं सूत गोस्वामी, जिनमें श्री कृष्ण बलराम दोनों ही हैं, लेकिन फिर भी भेद करते हैं सूत गोस्वामी बाद में कृष्णस्तु भगवान स्वयं कह के। वो बताना चाहते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण अवतार हैं इस दृष्टि से कि वो अवतीर्ण होते हैं, फिर भी वो अवतार ही हैं, अवतारों के उद्गम हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बलराम जी जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार हैं, वो भी अवतार लेते हैं भौतिक सृष्टि में, इसलिए अवतारों में उनका भी नाम आता है। और साथ साथ जितने भी भगवान के अवतार हैं वो भी तो भगवान के विस्तार ही हैं, या तो उनके अंश हैं या उनके अंशों के अंश हैं, कला जिसको कहते हैं। तो सारे विष्णु तत्व स्वांश जो हैं, स्वांश रूप भगवान के, वो सब भगवान के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विस्तार है। ठीक है,
प्राप्त होती है तो क्या स्वाभाविक तौर पे आध्यात्मिक बुद्धि प्राप्त नहीं हो पाता?
हो पाता है, परंतु आध्यात्मिक बुद्धि मतलब क्या? सही चीज करने की बुद्धि। सबसे पहली चीज क्या है? गुरु परंपरा के शरण में जाना, फिर वहां जाके बल मिलता है। सही बुद्धि के बिना हम भक्तों का और गुरुजनों का आश्रय नहीं ले सकते, वो सद्बुद्धि नहीं आएगी कि हमें वैष्णव के पास जाना है, गुरु परंपरा से का आश्रय स्वीकार करना है। तो भगवान श्री कृष्ण से वो बुद्धि मिलती है कि हम गुरु के आश्रय में जाएं, फिर हमें बलराम जी की कृपा से आध्यात्मिक बल मिलता है। तो ये है कृष्ण और बलराम दोनों साथ में। ठीक है, माइक यहां पे देंगे।
हरे कृष्ण।
हरे,
अभी भगवान सत्य वृंदा के साथ में शादी करते समय सात भैंसों के साथ में जो फाइट करते हैं उस टाइम उनका सात रूप हो जाते हैं, और वैसे ही भगवान वृंदावन में लीला में मतलब बछड़े बन जाते हैं एक साल तक, और गोपी भी बन जाते हैं, गोप बन जाते हैं एक साल तक, और वैसा ही उनके चतुर्भुज रूप में भी वो ब्रह्मा जी को उन्मोह करते हैं। ये पहला प्रकाश लीला है और बाकी के सब विलास लीला में रहते हैं।
जहां भगवान के विस्तार होते हैं और जब वो विस्तार मूल रूप से आकार में भिन्न नहीं होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो प्रकाश विग्रह। तो नारद जीते को जीतते समय जब उन्होंने बैलों से युद्ध किया, सात रूपों में विस्तार किया, वो सब कौन से थे? प्रकाश विग्रह थे, क्योंकि दिखने में एक जैसे, आकार में बिल्कुल एक। लेकिन जब ब्रह्म विमोहन लीला में श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया तो वो कौन से हुए? विलास विग्रह हुए। क्यों? क्योंकि आकार अलग था। किस दृष्टि से आकार अलग था? वो चतुर्भुज थे। श्री कृष्ण उस समय केवल 5 वर्ष के थे वृंदावन में, वो तो द्विज रूप द्विभुज थे, इसलिए वो हुए विलास विग्रह। गाय के रूप में विस्तार किया, वो भी विलास विग्रह हो गए, प्रकाश नहीं, क्योंकि आकार अलग था। वो ग गाय भी उस समय एक साल के लिए स्वयं कृष्ण ही थे, स्वरूप एक परंतु आकार भिन्न, इसलिए उनको भी लास विग्रह कहते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? चाहते हैं माइक
जो भगवान के विलास रूप हैं, जैसे पुरुष अवतार वगैरह, उनका हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन बलराम जी के अलग से कोई मंदिर ऐसा प्रचलित नहीं है भारत में, और उनका भाव भी भगवान का नहीं, सेवक भगवान का, लेकिन विष्णु का तो इज एंजॉयर, वो भाव होता है विष्णु का, तो ऐसे क्यों?
बलराम जी के भी अनेक मंदिर हैं, वृंदावन में भी हैं, वृंदावन में उनको दाऊजी मंदिर कहते हैं, जैसे गोकुल महावन में है, रामघाट में है दाऊजी मंदिर, अनेक जगह में है। एक तो 6.5 फुट वाले काले पत्थर से बने हुए दाऊजी हैं, बहुत बड़े हैं, तो दाऊजी नाम का स्थान है, वहां भी है बलदेव, बलदेव नाम का स्थान, उसमें दाऊजी मंदिर है, तो अनेक बलराम जी के मंदिर ब्रजभूमि में पाए जाते हैं। साथ साथ में वृंदावन की बात तो दूर है, दक्षिण भारत में भी बलराम जी का मंदिर है, कहाँ है? उडुपी में, मलपे में, जहां पर मध्वाचार्य जी को बाल कृष्ण की मूर्ति मिली थी, उस गोपी चंदन के अंदर बलराम जी की मूर्ति भी थी, और श्री कृष्ण की मूर्ति तो वो ले गए, और उडुपी में उन्होंने स्थापित कर दी, मंदिर बनवाया, और बलराम जी वहीं रह गए समुद्र के तट पे, तो वहां पे मंदिर बना मलपे में, तो वहां आज भी बलराम जी का मंदिर है, और वहां अलग से पूजा होती है उनकी। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, ठीक है, तो आज दिन भर आप प्रयास कीजिए ज्यादा जप आदि करने के लिए, सेवा करने के लिए, बलराम जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, और फिर शाम को आज झूलन यात्रा का अंतिम दिन है, और फिर अभिषेक आदि सब का कार्यक्रम यहाँ शाम को आज होगा, तो अवश्य आप सब आइएगा। श्री बलराम जयंती महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय।